संयुक्त राष्ट्र समाचार महबूब खान से। 31 अगस्त 2018 के इस साप्ताहिक समाचार बुलेटिन में आप सुन सकेंगे, युद्ध और सुलह सफाई दोनों ही हो रहे हैं बहुत जटिल, रचनात्मक और साहसिक प्रयासों की दरकार। रोहिंग्या लोगों पर अत्याचारों के लिए म्यांमार के सेना कमांडरों पर नरसंहार के आरोपों में मुकदमा चलाने की मांग। यमन में युद्धरत दोनों ही पक्ष हो सकते हैं युद्धापराधों के लिए जिम्मेदार। आधे से ज्यादा शरारती बच्चे स्कूली शिक्षा से हैं वंचित, गंभीर चिंता की बात। परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध में CTBT की हो सकती है महत्वपूर्ण भूमिका। और किस देश के लोग सबसे ज्यादा सैलानी और कौन सा देश है सबसे ज्यादा पसंदीदा ठिकाना। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेस ने खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि आजकल के दौर में युद्ध और शांति स्थापित करने के प्रयास दोनों ही बहुत ही जटिल होते जा रहे हैं। उन्होंने बुधवार को सुरक्षा परिषद की एक चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि शांति स्थापना और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के प्रयासों में और ज्यादा नियत, इरादे और प्रयास लगाने की जरूरत है। सुरक्षा परिषद में हुई ये चर्चा विवादों और युद्धों को सुलझाने के लिए सुलह सफाई का रास्ता अपनाने की संभावनाओं के विषय पर थी। महासचिव अंटोनियो गुटेरेस का कहना था कि संयुक्त राष्ट्र के पास सुलह सफाई के काफी संसाधन मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल विभिन्न तरीकों से किया जाता है। इनमें उनके विशेष दूतों और प्रतिनिधियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। इनके अलावा अक्सर सदस्य देशों के मध्यस्थों और क्षेत्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों की भूमिका भी अच्छे परिणाम हासिल करने में मदद करती है। इनमें सुलह सफाई के लिए कार्यालय स्थापित करना और औपचारिक बातचीत का सहारा लेना भी शामिल होता है। अंटोनियो गुटेरेस ने शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी और उनकी आवाज और राय को वजन दिए जाने की महत्ता पर भी जोर दिया। महासचिव का कहना था,
Inclusive mediation requires paying greater attention to the gender dimensions of conflict, including conflict-related sexual violence and the gendered impact of decisions around post-war reconstruction.
महासचिव अंटोनियो गुटेरेस कह रहे थे कि किसी भी विवाद, संघर्ष या युद्ध की स्थिति में सुलह सफाई के जरिए शांति स्थापना के प्रयासों में महिलाओं की भागीदारी से महिलाओं से संबंधित पहलुओं को अहमियत देकर उन्हें समझने में मदद मिलती है। इनमें संघर्ष और युद्ध के हालात में महिलाओं के साथ होने वाली यौन हिंसा की तकलीफों को समझने में भी मदद मिलती है। साथ ही युद्ध के बाद जब पुनर्निर्माण कार्य शुरू होते हैं तो उनमें महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों को समझना भी बहुत जरूरी है और ऐसा महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करके ही किया जा सकता है। मसलन युद्ध के बाद पुनर्निर्माण कार्यों के दौरान अगर कोई संवैधानिक कमेटी बनती है या कोई संघीय प्रणाली बनाई जाती है तो वो महिलाओं और उनकी भागीदारी से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले लेती है। यदि उनमें महिलाओं की भागीदारी ना हो तो उनकी राय और आवाज का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। महासचिव अंटोनियो गुटेरेस के शब्द। महासचिव ने ऐसे साहसिक प्रयास करने और ऐसी रचनात्मक संभावनाएं और क्षमताएं विकसित करने का आह्वान भी किया जिनके जरिए शांति स्थापना में सुलह सफाई की भूमिका मजबूत की जा सके। संयुक्त राष्ट्र के एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन यानी जांच दल ने मांग की है कि म्यांमार में रोहिंग्या लोगों पर बड़े पैमाने पर हिंसा करने के लिए वहां की सेना के वरिष्ठ कमांडरों पर नरसंहार का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों और जांचकर्ताओं ने म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय पर अगस्त 2017 में शुरू हुई भीषण हिंसा के मामलों की जांच करके एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। उस हिंसा के बाद करीब 7 लाख रोहिंग्या लोग सुरक्षा की खातिर बांग्लादेश पहुंचे हैं। इस जांच मिशन की एक सदस्य राधिका कुमारस्वामी ने कहा है कि जांच के दौरान रोहिंग्या शरणार्थियों की जो भयावह आपबीती सामने आई है उससे वो खुद और जांच टीम हैरान रह गई। राधिका कुमार स्वामी का कहना था,
The scale, brutality and systematic nature of rape and violence indicate that they are part of a deliberate strategy to intimidate, terrorize or punish the civilian population. They are used as a tactic of war.
जिस सोचे समझे तरीके और बेरहमी से हिंसा की गई और वहशी तरीके से लड़कियों और महिलाओं को बलात्कार का निशाना बनाया गया उसे देखकर तो यही संकेत पक्का होता है कि ये एक व्यापक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। रणनीति एक नागरिक आबादी को डराने, प्रताड़ित करने और कोई दंड देने की। किसी आबादी को डराने धमकाने, उसे प्रताड़ित करने, उस पर बर्बर तरीके से हिंसा करने, लड़कियों और महिलाओं को बलात्कार का निशाना बनाने के ये तरीके युद्ध के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए गए। इतना ही नहीं, लड़कियों और महिलाओं को गुलाम बनाकर उनके साथ बेतहाशा यौन हिंसा की गई, उन्हें जबरन नंगा किया गया और उनके अंग भी काटे गए। रोहिंग्या संकट पर संयुक्त राष्ट्र के एक जांच दल की एक सदस्य राधिका कुमारस्वामी के शब्द। राधिका कुमारस्वामी का कहना था कि मानवाधिकारों के क्षेत्र में बहुत से वर्षों तक काम करने के बावजूद इस तरह के अत्यंत डरावने मामले उन्होंने नहीं देखे जैसा कि रोहिंग्या लोगों के साथ बर्ताव किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के जांच दल ने हिंसा और प्रताड़ना का सामना करने वाले सैकड़ों रोहिंग्या लोगों की आपबीती सुनने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहिंग्या लोगों पर म्यांमार की सेना द्वारा जो हिंसा की गई उससे नरसंहार, युद्धापराध और मानवता के विरुद्ध अपराधों के ठोस सबूत पाए गए हैं। इसी आधार पर इस जांच दल में शामिल मानवाधिकार विशेषज्ञों ने म्यांमार के कई वरिष्ठ सेना कमांडरों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नरसंहार, युद्धापराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मुकदमा चलाने की मांग की है। इस रिपोर्ट के बाद महासचिव अंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अथक प्रयासों के बावजूद म्यांमार के रखाइन स्टेट में रोहिंग्या शरणार्थियों की स्वदेश वापसी के लिए अनुकूल वातावरण नहीं बना है। उन्होंने सुरक्षा परिषद से अनुरोध किया है कि वो रोहिंग्या लोगों की दुर्दशा को रोकने के लिए म्यांमार सरकार के साथ मिलकर काम करे। संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं ने कहा है कि यमन में युद्धरत सभी पक्षों द्वारा की जा रही गतिविधियां युद्धापराधों के दायरे में परिभाषित हो सकती हैं। यमन के हालात पर बने एक जांच दल ने दर्जन भर से भी ज्यादा बार यमन और पड़ोसी देशों का दौरा करके स्थिति का जायजा लेने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इस जांच दल का गठन जिनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद ने किया था। जांच दल की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले सप्ताह ही सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन सरकार के समर्थन में हुदायदाह गवर्नरेट में एक हवाई हमला किया था। उस हमले में कम से कम 26 बच्चे और 4 महिलाओं की मौत हो गई थी। हुदायदाह गवर्नरेट में विपक्षी गुटों का नियंत्रण है। जांच दल के एक सदस्य चार्ल्स गेरावे ने अफसोस जताते हुए कहा कि इस गठबंधन के प्रतिनिधियों के साथ रियाद और ओमान में कई बैठकें की गईं, लेकिन फिर भी यमन में किए जा रहे हवाई हमलों के बारे में समुचित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। चार्ल्स गेरावे का कहना था,
If there are systemic flaws in the targeting process, causing civilian casualties beyond what one would expect, then that process needs to be examined and where there are flaws they need to be
अगर हमले के ठिकानों की निशानदेही करने और हमले करने के तरीकों में लगातार लापरवाही और कमियां पाई जाएं तो उसकी जांच करना बहुत जरूरी है। विशेष रूप से यदि उन हमलों में आम और निहत्थे लोग असाधारण और अनपेक्षित रूप से हताहत हो रहे हों तो युद्ध के इन तरीकों में ये खामियां कहां और किस हद तक हैं उनका पता लगाकर उन्हें दूर करना आवश्यक है। हमने आम लोगों को निशाना बनाने वाली युद्धक गतिविधियों में इन खामियों को दूर करने की कोई कोशिश या इरादा नहीं देखे हैं। जांच दल के एक सदस्य चार्ल्स गेरावे के शब्द। रिपोर्ट में आम लोगों को निशाना बनाने की युद्धक गतिविधियों में विपक्षी हूती लड़ाकों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हूती लड़ाके शहरी और आबादी वाले इलाकों में गोलीबारी कर रहे हैं। जांचकर्ताओं का कहना है कि इन सब गतिविधियों को युद्धापराध की श्रेणी में परिभाषित किए जाने के पर्याप्त सबूत हैं। दुनिया भर में जितने बच्चे शरणार्थी के तौर पर रहने को मजबूर हैं उनमें से आधे से भी ज्यादा बच्चों को स्कूली शिक्षा नहीं मिल पा रही है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने कहा है कि ये हालात इसलिए और भी ज्यादा चिंताजनक हैं क्योंकि 2017 के दौरान शरणार्थियों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। एजेंसी की एक ताज़ा रिपोर्ट बुधवार को जारी की गई जिसमें कहा गया है कि साल 2017 के अंत तक पूरी दुनिया में स्कूली शिक्षा के योग्य शरणार्थी बच्चों की कुल संख्या करीब 74 लाख थी। इनमें से करीब 40 लाख बच्चों को कोई भी औपचारिक शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। साल 2016 के मुकाबले इस संख्या में करीब 5 लाख की वृद्धि हुई थी। रिपोर्ट इस तरफ भी ध्यान दिलाती है कि जिन बच्चों को स्कूली या अन्य तरीके से औपचारिक शिक्षा मिल रही है उनकी शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर सुनिश्चित करना भी बहुत जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR में वरिष्ठ शिक्षा सलाहकार ईटा शीही का कहना था,
In the past, there were many instances when separate schools were built up, parallel schools, often using the home curriculum, and we have seen again and again and again that the quality of these schools diminishes.
ईटा शीही कह रही थी कि अतीत में बहुत से ऐसे मामले देखे गए हैं जहां आवश्यकता पूरी करने के लिए विशेष या समानांतर स्कूल चलाए गए। इनमें अक्सर घरों में ही शिक्षा दी जाती थी अनौपचारिक पाठ्यक्रम के जरिए, लेकिन हमने ये भी देखा है कि समय गुजरने के साथ ही इन समानांतर स्कूलों की गुणवत्ता गिरती जाती है, उनके पास धन और संसाधन खत्म हो जाते हैं और बच्चों को शिक्षा की उपलब्धियों के बारे में कोई प्रमाण पत्र भी नहीं मिल पाते हैं। इसलिए ऐसे स्कूलों में 3, 4, 5 या 10 साल भी गुजारने के बाद अगर बच्चों को ऐसी शिक्षा और प्रमाण पत्र नहीं मिल पाते जिनके जरिए वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, तो ऐसी शिक्षा का क्या फायदा। शरणार्थी बच्चों की शिक्षा के बारे में UNHCR में वरिष्ठ शिक्षा सलाहकार ईटा शीही की चिंता। उनका ये भी कहना था कि ये ध्यान रखने की बात है कि शिक्षा बच्चों को न सिर्फ अपना दुखद अतीत और तकलीफें भुलाने में मदद करती है बल्कि एक बेहतर जीवन और भविष्य की उम्मीद और संभावना भी जगाती है। शिक्षा के जरिए ही किसी भी रूप में प्रभावित समुदायों और देशों को फिर से खुशहाली और विकास के रास्ते पर ले जाने की संभावना और क्षमता पैदा होते हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की 2 एजेंसियों ने चेतावनी के अंदाज में कहा है कि दुनिया भर में लाखों बच्चों को स्कूलों में साफ सफाई की बुनियादी सेवाओं से भी वंचित रहना पड़ रहा है, यहां तक कि लाखों बच्चों को रोजाना पीने का स्वच्छ और स्वस्थ पानी भी नहीं मिल पाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ द्वारा जारी एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में सभी लोगों को पीने का साफ पानी और साफ सफाई के साधन मुहैया कराना अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस रिपोर्ट में खासतौर से स्कूलों में इन सुविधाओं की मौजूदगी के हालात का जायजा लिया गया। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर के करीब 1/3 स्कूलों में पीने के साफ पानी और स्वच्छ शौचालय जैसी सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। बुधवार को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट्स यानी परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ये दिवस मनाने का उद्देश्य परमाणु परीक्षणों के भीषण प्रभावों की तरफ ध्यान आकर्षित करना होता है, साथ ही इसका मकसद लोगों में जागरूकता फैलाकर परमाणु परीक्षणों को रोकने में सरकारों पर दबाव बनाने के लिए माहौल बनाना भी होता है। इस दिवस के अवसर पर महासचिव अंटोनियो गुटेरेस ने एक संदेश में कहा कि परमाणु परीक्षणों के हानिकारक प्रभाव किसी सीमा रेखा या देशों की सीमाओं को नहीं जानते। परमाणु परीक्षणों से अक्सर वो लोग और समुदाय सबसे ज्यादा गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं जो या तो गरीब होते हैं या जिन्हें विकास का लाभ नहीं मिला होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी CTBT परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने और परमाणु निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभा सकती है। इसलिए उन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि इस संधि को असरदार बनाने के लिए सभी संभव प्रयास करें। और बुलेटिन के आखिर में एक दिलचस्प खबर। ये तो हम सभी जानते हैं कि चीन निर्मित सामान दुनिया भर में हर जगह मिल जाता है। अब ये भी आंकड़े सामने आए हैं कि चीन के लोग सैर सपाटा भी बहुत पसंद करते हैं, खासतौर से विदेशों में। संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन संगठन यानी UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के ताजा आंकड़े बताते हैं कि साल 2017 के दौरान पर्यटन पर करीब 13 खरब डॉलर की रकम खर्च की गई। इसमें से करीब 20% हिस्सा चीनी सैलानियों ने खर्च किया। संगठन का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय सैलानियों के लिए फ्रांस सबसे पसंदीदा ठिकाना रहा। फ्रांस के बाद स्पेन पर्यटकों के लिए दूसरे नंबर का आकर्षण बनने में कामयाब रहा। दिलचस्प बात यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में पिछले 8 वर्षों से लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तो ये था साप्ताहिक समाचार बुलेटिन संयुक्त राष्ट्र रेडियो से। अब महबूब खान को इजाजत दीजिए।